एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी किताब में गोता लगा रहे हैं जिसने सचमुच दुनिया को देखने का नजरिया बदला है, खासकर महिलाओं के अधिकारों के बारे में।
हाँ।
ये है मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट की अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन,
जी,
जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं नारी अधिकारों का समर्थन। सोचिए 1792 में लिखी गई, मतलब 250 साल से भी ज्यादा पहले।
बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि ये किताब आज भी उतनी ही, बल्कि मैं कहूंगा कुछ मामलों में शायद ज्यादा ही प्रासंगिक लगती है।
हाँ, कैसे?
ये उन बुनियादी सवालों से जूझती है। समानता क्या है? शिक्षा का असल मतलब क्या है? समाज कैसे बेहतर बन सकता है?
अच्छा,
ये पूछती है कि अगर महिलाओं को सिर्फ आप कह सकती हैं सुंदर दिखने या घर संभालने के लिए नहीं, बल्कि तर्क करने वाले, सोचने वाले इंसानों की तरह देखा जाए तो क्या होगा?
बिल्कुल। और इन सवालों को उठाने वाली शख्सियत भी कम दिलचस्प नहीं थी, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। 1759 से 1797 तक एक अंग्रेजी लेखिका, दार्शनिक और अपने समय से कहना चाहिए बहुत आगे सोचने वाली महिला।
सही का।
उनका जीवन कोई फूलों की सेज नहीं था।
हाँ, उनका जीवन ही आप कह सकते हैं उनके विचारों की कुंजी है।
जी,
वो उस दौर में जी रही थी जब यूरोप में ज्ञानोदय यानी एनलाइटमेंट की लहर थी, फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी, मतलब पुराने विचारों को चुनौती दी जा रही थी।
जी,
लेकिन उनके अपने जीवन में उन्होंने काफी मुश्किलें झेली। परिवार में अस्थिरता थी, आर्थिक तंगी देखी, तो इन सब ने उन्हें महिलाओं की जो सामाजिक और कानूनी बेबसी थी ना, उसका सीधा अनुभव दिया।
और सोचिए उस जमाने में जब महिलाओं के लिए औपचारिक शिक्षा के दरवाजे लगभग बंद थे, वो काफी हद तक स्वर शिक्षित थीं।
हाँ, ये बहुत बड़ी बात है।
उन्होंने गवर्नेस के तौर पर काम किया, स्कूल टीचर रहीं और फिर एक लेखिका और अनुवादक बनी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस वक्त।
निश्चित रूप से। और शायद उनके इसी अनुभव ने उन्हें वो पैनापन दिया जो शायद आराम की जिंदगी जीने वाले कई पुरुष दार्शनिकों में नहीं था। वो लंदन के जो रेडिकल बुद्धिजीवी थे उनके बीच उठी बैठी, थॉमस पेन जैसे विचारकों से उनका मिलना हुआ।
अच्छा,
और उनकी पिछली किताब वो पुरुषों के अधिकारों पर थी, उसने उन्हें एक गंभीर विचारक के तौर पर स्थापित भी कर दिया था। तो जब उन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर लिखा तो उसमें उनके निजी संघर्ष और ज्ञानोदय के जो आदर्श थे उनका एक अनूठा मिश्रण था।
तो चलिए अब किताब पर आते हैं, नारी अधिकारों का समर्थन। जैसा आपने कहा, ये सिर्फ हक मांगने की लिस्ट नहीं है, ये एक मजबूत नैतिक और दार्शनिक दलील है। जरा इसकी गहराई में जाते हैं, इसका सबसे बुनियादी तर्क क्या है?
देखिए, सबसे क्रांतिकारी बात जो वुलस्टोनक्राफ्ट कहती हैं वो ये है कि महिलाएं स्वभाव से पुरुषों से कमतर नहीं होती।
अच्छा।
अगर वो कमजोर या ज्यादा भावुक या तर्क में कमजोर दिखती हैं तो ये उनकी प्रकृति नहीं है, ये समाज और शिक्षा की देन है। समाज ने एक तरह से जानबूझकर उन्हें ऐसा बनाया है।
यानी वो कह रही हैं कि सोचने समझने की क्षमता, जिसे वो रीजन यानी तर्क कहती हैं,
हाँ तर्क,
वो इंसानों की सबसे बड़ी खूबी है और ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में बराबर होती है।
एकदम।
तो अगर आप महिलाओं को सही शिक्षा और अवसर नहीं देते तो आप सिर्फ उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे,
नहीं,
बल्कि आप पूरे समाज की प्रगति रोक रहे हैं।
बिल्कुल। उनका मानना था कि अगर महिलाओं को अपनी बुद्धि और नैतिकता विकसित करने का मौका मिले तो वे पुरुषों के बराबर साबित होंगी, बौद्धिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी। इस किताब का मकसद ही यही था, उन दलीलों को काटना, उनको ध्वस्त करना जो महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखने के लिए दी जाती थीं। ये एक तरह से उस समय के पढ़े लिखे लोगों, खासकर पुरुषों और नीति बनाने वालों के लिए एक चुनौती थी।
तो ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे सामाजिक रीतियां, कानून और खासकर, जैसा आपने कहा, गलत किस्म की शिक्षा, ये सब मिलकर महिलाओं को एक तरह के सुनहरे पिंजरे में कैद कर देते हैं।
हाँ, गिल्ट केज कहती हैं वो।
और फिर एक ऐसे समाज की तस्वीर पेश करती है जहां मर्द और औरत दोनों तर्क और बराबरी के आधार पर जी सकें।
चलिए उन मुख्य विचारों को थोड़ा और समझते हैं जिन्होंने इस किताब को इतना प्रभावशाली बनाया। अध्यायों में एक एक करके जाने की बजाय हम कुछ बड़े मुद्दों पर ध्यान देते हैं जिन पर वुलस्टोनक्राफ्ट ने जोर दिया।
ठीक है।
पहला और सबसे अहम है तर्क की सर्वोच्चता, प्राइमेसी ऑफ रीजन।
हाँ, ये तो पूरी किताब का आधार लगता है। वुलस्टोनक्राफ्ट कहती हैं कि तर्क ही हमें जानवर से इंसान बनाता है, ये ईश्वर का दिया तोहफा है और ये मर्द और औरत दोनों में है।
बिल्कुल।
इसलिए महिलाओं को ऐसी शिक्षा से वंचित रखना जो उनके तर्क को विकसित करे, ये न सिर्फ गलत है बल्कि एक तरह से पाप है।
यहीं पर वो उस समय के मशहूर विचारक जैसे रूसो उनकी कड़ी आलोचना करती हैं।
रूसो की?
हाँ।
अच्छा,
रूसो ने कहा था कि लड़कों को तो तर्क के लिए पढ़ाओ, लेकिन लड़कियों को उनको इसलिए पढ़ाओ कि वो लड़कों को खुश कर सकें और घर संभाल सकें।
ओहो।
वुलस्टोनक्राफ्ट कहते हैं ये पाखंड है। आप एक तरफ आजादी और तर्क की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ आधी आबादी को इससे बाहर रख देते हैं, ये कैसे चलेगा?
और ये सिर्फ रूसो की बात नहीं थी, है ना? वुलस्टोनक्राफ्ट ने उन तमाम लेखकों और तौर तरीकों पर हमला बोला जो महिलाओं को सतही चीजों में उलझाए रखते थे।
हाँ, जैसे?
जैसे सिर्फ सुंदर दिखना या नाचना गाना सीख लेना या बस मीठा बोलना, इन सब पर जोर था। उनका कहना था कि ऐसी शिक्षा महिलाओं को चालाक, दिखावटी और भावनात्मक रूप से कहना चाहिए अस्थिर बनाती है। ये उन्हें न तो अच्छी माँ बनने देती है, न ही एक जिम्मेदार नागरिक।
बिल्कुल, इसे वो नकली गुणों की खेती कहती हैं, आर्टिफिशियल ग्रेसेस। और यहीं पर उनका दूसरा बड़ा मुद्दा आता है, मौजूदा शिक्षा प्रणाली का खोखलापन और उसका नुकसान।
अच्छा, खोखलापन और नुकसान भी?
हाँ, वो कहती हैं कि महिलाओं को जो शिक्षा दी जा रही थी वो सिर्फ अपर्याप्त नहीं थी, वो असल में हानिकारक थी। वो उन्हें बौद्धिक रूप से पंगु बना रही थी।
जरा सोचिए, आज भी भारत में हम लड़कियों की शिक्षा की गुणवत्ता पर कितनी बात करते हैं, स्टेम जैसे क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश हो रही है।
हाँ, बिल्कुल।
वुलस्टोनक्राफ्ट की ये बात कि शिक्षा सिर्फ डिग्री लेना नहीं है बल्कि सोचने की क्षमता विकसित करना है, ये आज भी कितनी जरूरी लगती है।
और तीसरा अहम मुद्दा है लिंग आधारित गुणों का खंडन। उस जमाने में ये बहुत माना जाता था कि पुरुषों के गुण अलग होते हैं, जैसे साहस, बुद्धि, और महिलाओं के अलग नम्रता, आज्ञाकारिता, भावनाएं।
हाँ, ये तो आज भी सुनने को मिल जाता है कहीं ना कहीं।
बिल्कुल, वुलस्टोनक्राफ्ट कहती हैं ये बकवास है। सद्गुण यानी वर्च्यू तो एक ही होता है और वो तर्क और विवेक पर आधारित होता है। लिंग के आधार पर सद्गुण को बांटना सरासर गलत है।
वो शालीनता यानी मॉडेस्टी जैसे शब्द को भी नया अर्थ देती है ना?
और विवेक से पैदा हुई विनम्रता है।
अच्छा।
और वो समाज के जो दोहरे मापदंड थे उन पर भी सवाल उठाती हैं। कैसे महिलाओं की इज्जत को उनकी यौन पवित्रता से जोड़ दिया जाता था, जबकि पुरुषों पर ऐसी कोई खास बंदिश नहीं होती थी।
ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है।
और फिर वो इन व्यक्तिगत मुद्दों को बड़े सामाजिक ढांचे से जोड़ती हैं। चौथा मुद्दा, पितृसत्ता की आलोचना।
पितृसत्ता?
हाँ, वो कहती हैं कि परिवार में पति का जो एकाधिकार होता है वो वैसा ही अन्याय है जैसा राज्य में किसी राजा का होता है। उनकी एक मशहूर लाइन है,
हाँ,
पतियों का दैवीय अधिकार राजाओं के दैवीय अधिकार की तरह उम्मीद है इस प्रबुद्ध युग में बिना खतरे के लड़ा जा सकता है।
क्या बात है, मतलब वो घर के अंदर की जो गैर बराबरी थी उसे सीधे सीधे राजनैतिक तानाशाही से जोड़ रही थी।
बिल्कुल, ये उस वक्त के लिए बहुत क्रांतिकारी सोच थी।
और इसी से जुड़ा है उनका समाधान भी शायद, वो सह शिक्षा को एडुकेशन का प्रस्ताव।
हाँ, ये शायद उनका सबसे ठोस और सबसे आधुनिक लगने वाला सुझाव था। अध्याय 12 में वो एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव रखती हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली?
हाँ, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली, जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ें, एक जैसा पाठ्यक्रम पढ़ें। उनका मानना था कि बचपन से साथ पढ़ने और घुलने मिलने से दोनों लिंगों के बीच आपसी सम्मान और समझ बढ़ेगी, न कि वो कृत्रिम दूरी और गलत फहमियां जो उन्हें अलग अलग रखने से पैदा होती हैं।
सोचिए, आज भी सह शिक्षा को लेकर कहीं कहीं हमारे यहाँ बहस होती है, और वो 250 साल पहले इसकी वकालत कर रही थीं।
हाँ, वो मानती थीं कि अगर बचपन से लड़के लड़कियों को बराबर का साथी समझा जाएगा तो बड़े होकर वो अपने रिश्तों में भी बराबरी लाएंगे। शादी को वो दो बराबर तर्कशील दोस्तों की साझेदारी के रूप में देखती थी।
दोस्ती, आपसी सम्मान और बौद्धिक साथ, ये शादी की नींव होनी चाहिए, ये उनका मानना था।
तो संक्षेप में कहें तो मुख्य संदेश ये हैं, तर्क सबके लिए है, शिक्षा का मकसद इंसान को बेहतर बनाना है, ना कि सिर्फ सामाजिक भूमिकाओं के लिए तैयार करना। गुण लिंग आधारित नहीं होते, और सच्ची आज़ादी के लिए बौद्धिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता जरूरी है।
इन गहरे विचारों के साथ साथ वुलस्टोनक्राफ्ट की भाषा भी बहुत दमदार थी। कुछ पंक्तियां तो मतलब दिमाग में अटक जाती हैं।
हाँ, बिल्कुल, जैसे उनका स्वतंत्रता पर जोर देना। एक जगह वो लिखती हैं, मैं लंबे समय से स्वतंत्रता को जीवन का सबसे बड़ा वरदान, हर गुण का आधार मानती हूँ, और मैं अपनी इच्छाओं को सीमित करके हमेशा स्वतंत्रता सुरक्षित रखूंगी, भले ही मुझे बंजर भूमि पर रहना पड़े।
वाह, मतलब निर्भरता से हर हाल में आज़ादी बेहतर है, चाहे उसके लिए सादा जीवन जीना पड़े। ये नैतिकता की पहली शर्त है उनके लिए।
बिल्कुल, आत्मनिर्भरता।
और एक और जो मुझे बहुत सीधी और सच्ची बात लगती है, मैं नहीं चाहती कि महिलाओं का पुरुषों पर अधिकार हो, बल्कि खुद पर हो।
यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ये नारीवाद पर जो अक्सर इल्ज़ाम लगते हैं ना कि ये पुरुषों के खिलाफ है या सत्ता छीनना चाहता है, उसका कितना सटीक जवाब है। मकसद प्रभुत्व नहीं बल्कि स्वायत्तता है, आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम और अपने विवेक से जीने की आज़ादी पाना है।
सही काम, और वो सुनहरे पिंजरे वाला रूपक तो कमाल का है ही।
हाँ, वो वाला।
बचपन से सिखाया जाता है कि सुंदरता ही स्त्री का राजदंड है, मन शरीर के अनुरूप ढल जाता है और अपने सुनहरे पिंजरे के चारों ओर घूमते हुए केवल अपनी जेल को सजाने की कोशिश करता है।
उफ, कितनी खूबसूरती से बताया है कि कैसे सिर्फ बाहरी चीजों पर ध्यान देने से असली विकास, मन का विकास रुक जाता है, वो जेल को सजाने में ही लगी रहती है।
और ये विचार सिर्फ किताबी नहीं है, आज की जिंदगी में भी इन्हें लागू करने के कई तरीके हैं ना।
हाँ बिल्कुल।
जैसे
कहाँ कहाँ?
देखिए, शिक्षा में तो है ही, लड़कियों को हर विषय पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, पाठ्यक्रम से लैंगिक रूढ़िवादिता हटाना, दफ्तरों में भी समान काम के लिए समान वेतन की बात, लीडरशिप में महिलाओं को बराबर मौके देना, और ये सोच बदलना कि भाई कुछ काम सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, कुछ सिर्फ औरतें ही।
और घर परिवार में?
घर परिवार में तो बहुत ज्यादा, शादी या पार्टनरशिप को बराबरी पर आधारित बनाना, आपसी सम्मान हो, मिलके फैसले लिए जाएं, दोस्ती हो।
हाँ, वो दोस्ती वाली बात जो उन्होंने कही थी।
और बच्चों की परवरिश में भी ये बहुत जरूरी है, बेटा बेटी में भेद न करना, बेटियों को सिर्फ नाजुक नहीं बल्कि निडर और जिज्ञासु बनाना, और बेटों को सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि संवेदनशील और दूसरों का सम्मान करना सिखाना।
सही बात है, और शायद व्यक्तिगत स्तर पर भी हम वुलस्टोन क्राफ्ट से कुछ सीख सकते हैं।
हाँ क्यों नहीं, हमेशा सीखते रहना, अपने फैसले तर्क से लेना, सामाजिक दबाव में आकर नहीं बल्कि अपनी समझ से जीना, और खासकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करना, ये सब उसी स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं जिसकी वो बात कर रही थी।
तो इस पूरी चर्चा से आपके हिसाब से सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? क्या है वो एक चीज जो श्रोताओं को जरूर याद रखनी चाहिए इस किताब से?
मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसानी काबिलियत, हमारी जो क्षमता है, वो हमारी सामाजिक परिस्थितियों और हमें मिलने वाले मौकों पर ज्यादा निर्भर करती है, न कि हमारे लिंग या किसी प्राकृतिक सीमा पर। जब हम समाज के किसी हिस्से को, जैसे यहाँ महिलाओं की बात हो रही है, पीछे रखते हैं, उन्हें मौके नहीं देते, तो हम सिर्फ उनका नुकसान नहीं करते, हम अपनी सामूहिक क्षमताओं को सीमित करते हैं।
सही।
तो समानता सिर्फ न्याय की बात नहीं है, ये समाज को बेहतर और मजबूत बनाने का तरीका है, सबके भले के लिए है।
मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि 250 साल पहले के समाज में, जहां धर्म और परंपरा का इतना जबरदस्त बोलबाला था, एक महिला ने इतनी निर्भीकता से, इतने साहस से स्थापित विचारों को चुनौती दी।
हाँ, ये सचमुच कमाल है।
रूसो जैसे बड़े बड़े नामों की खुलकर आलोचना की, सह शिक्षा जैसा विचार रखा जो आज भी कई जगह पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है, ये वाकई कमाल की हिम्मत और दूरदर्शिता थी। ये किताब सच में आधुनिक नारीवादी सोच की नींव है।
बिल्कुल, और शायद यही वो सवाल है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं।
क्या सवाल?
कि 250 साल गुजर गए, लेकिन आज भी हमारा समाज, हम और आप, महिलाओं की बुद्धि और तर्क को कितनी अहमियत देते हैं, उनकी सुंदरता या उनसे जो अपेक्षित भूमिकाएं हैं उनकी तुलना में।
सोचने वाली बात है।
क्या हम वाकई उस सुनहरे पिंजरे से पूरी तरह आजाद हो पाए हैं जिसके बारे में वुलस्टोन क्राफ्ट ने लिखा था, या बस उस पिंजरे का रंग रूप बदल गया है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।